आज हम चलते हैं पवित्र शास्त्र में से एक छोटा सा अध्ययन करते हैं। मैं अक्सर आशीषों के विषय में बात करता रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आशीष देता है। आपको ध्यान होगा उत्पत्ति की पुस्तक में, आज हम वहां जाएंगे नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक में मानव की रचना करने के बाद तुरंत, यानी आदम और हवा की रचना करने के बाद तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और उस समय जो कुछ परमेश्वर ने उनको बोला कि फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में करो, वो सब आशीष के वचन थे। यानी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को सबसे पहले क्या दी? आशीष दी। उसके बाद हम उसी उत्पत्ति की पुस्तक में क्या देखते हैं, 12वां अध्याय में क्या देखते हैं कि अब्राहम से बात करते हुए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। 12वां अध्याय का 3रा पद से शुरू होता है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें आशीष देगा या आशीर्वाद देगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल जो है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर हमेशा आशीष देना पसंद करता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी हम उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं है, अभी हम नया नियम में हैं, तो इफिसियों की पत्री में सबसे पहले हमें क्या सीखने को मिलता है? वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में या मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को बहुत आनंद मिलता होगा ना जब परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे। उसके बाद एक और वचन है जो आपने इतना कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उस पर हम आज ध्यान करेंगे। पत्रस की पहली पत्री का 3रा अध्याय का 9वां पद में, 1 पीटर 3:9, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो बुलाया है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। यानी हम कभी कभी सोचते ना कि हमारे जीवन में क्या बुलाहट है परमेश्वर की, यानी परमेश्वर ने हमें जो बुलाया उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। और हम कुछ समय पहले हमने इस बारे में अध्ययन भी किया था कि हम अपनी बुलाहट को कैसे पहचान सकते हैं। तो यदि लोग अभी भी नहीं जान पाते कि आपकी बुलाहट क्या है, तो यहाँ पर एक बुलाहट आपको पता चल जाएगी, वो क्या है, आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। 3रा अध्याय का 9वां पद में लिखा है कि आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या होने के लिए बुलाया है? आशीष के वारिस होने के लिए। आप लोग एक बार बोल सकते हैं कि आशीष के वारिस वो कौन है? तो परमेश्वर ने आपको और मुझे वारिस होने के लिए बुलाया है। तो एक बुलाहट यहां पर आपको पता चल जाती है जो कि सबके लिए है, आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। इसमें और भी कुछ बातें हैं जिस पर हम गौर करेंगे। इस नवा पद इस प्रकार से शुरू होता है, करता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। शुरुआत में मैंने कहा कि परमेश्वर ने आदि में मानव की रचना के तुरंत बाद आशीष दी। उसके बाद हमने देखा इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी, और वो आशीष हमारे लिए है क्योंकि हम विश्वास के कारण इब्राहिम की संतान है। जितनों ने विश्वास किया वे सबके सब इब्राहिम की संतान की गिनती में आते हैं, और इस कारण जो कुछ परमेश्वर ने वहां पर कहा था अब्राहम से, वो मेरे लिए है। आपके लिए है क्या? मुझे नहीं पता, मेरे लिए है। और फिर इफिसियों की पत्री में जो हम देख रहे हैं कि सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया, वो भी मेरे लिए है। आप अपना देख लीजिए, मेरे लिए है, और ये जान के खुशी होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारे आशीष परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन हमेशा हमें हर प्रकार की आशीष दिखाई नहीं देती अगर हम ईमानदारी से बात करें तो। हर समय हर प्रकार की आशीष हमें दिखती नहीं है, जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दी है हमें और हम आशीष के वारिस है। और आज हमने फिर से पढ़ा है कि आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया भी है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मेरे ध्यान में आया है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। यहां पर हमने क्या देखा, पत्रस की पहली पत्रिका तीसरा अध्याय का नव पद में यहां पर परमेश्वर एक साधारण इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है कि क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं तो हमारे मुंह से हमेशा आशीष ही निकले। बुराई के बदले हम क्या ना करें, बुराई ना करें, और गाली के बदले हम गाली ना दे। कारण क्या है? क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे मुंह से हमेशा आशीष निकलनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की कुछ बातों पर ध्यान ना देने के कारण आशीष हमसे दूर रह सकती है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर ध्यान देने के कारण हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो जाहिर है कि हम पर आशीषें होंगी, और परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना देने के कारण हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। तो जितना हम परमेश्वर से दूर जाते हैं उतना हम आशीषों से भी दूर जा सकते हैं। आशीषों के पास या आशीष हमारे पास या हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि हम एक बात का ध्यान करें कि हमारे मुंह से हमेशा आशीष ही निकले, और ये शायद सबसे कठिन काम है। सोच के देखिए, मुंह से हमेशा आशीष की बातें बोलने के लिए मन में आशीष की बातें होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा मुश्किल है। इस संसार में रहते हुए विश्वास पत्रस की पहली पत्री किसके नाम पे लिखी गई है? विश्वासियों के नाम। इस संसार में रहते हुए जाहिर है कि विश्वासियों के मुंह से भी गलत बातें निकलती है, गालियां निकलती है। बुराई के बदले विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। इसलिए उसको आदेश दिया था कि मत करना, इस संसार की रीति में चलना बहुत क्या है, आसान है। गाली के बदले गाली देना आसान है, बुराई के बदले बुराई सोचना और करना आसान है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मत करो, तुम्हारे मुंह से सिर्फ आशीष ही निकले, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए तुम्हें बुलाया मैंने। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, हमें सिर्फ आशीष देना चाहिए। आशीष देने के लिए, बोलने के लिए पहले आशीष मन में होना चाहिए, आशीष की बातें सोचना चाहिए। अब हम चलेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, जहां से हमने शुरू किया था, और उस 12वें अध्याय में चलते हैं। वहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ठोस कारण, जो पत्रस की पत्री में उसका जिक्र है, जो हमने अभी देखा उसका संकेत है, लेकिन उसकी समझ और खुलासा आपको उत्पत्ति की पुस्तक में और भी अच्छी तरह मिल सकता है। मेरा ध्यान इस बात पर कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले गया, जब परमेश्वर के एक जन ने मुझे कहा कि तुम्हें एक बार रिसर्च करना है कि 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा पदों में क्या लिखा है, और वहाँ क्या लिखा है वो तुम लगभग आप सबको पता ही है, जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इब्रानी भाषा में यहाँ पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं जो कि अंग्रेजी और हिंदी में नहीं दिखता। तब तो फिर मैं एक्टिव हो गया, क्योंकि जैसे उन्होंने इब्रानी शब्द बोला कि अलग से लिखा है, तो फिर मैंने स्टडी की, अध्ययन किया और मैंने एक बात को देखा। इस 12वां अध्याय में तीसरे पद से अगर हम पढ़ना शुरू करें कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, समझ आता है ना? अगर हम लोगों को आशीष देते रहें, जो लोग हमें आशीष देंगे, परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो लोग हमें श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। आप ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन लिखा ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है? जो तुम्हें, हाँ, तो इस बात को ध्यान से देखने की जरूरत है ना, क्योंकि अंग्रेजी बाइबल में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, जो आपको आई विल कर्स दोस हू कर्स यू, और हिंदी में भी कुछ ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। लेकिन अभी जो मेरे पास ट्रांसलेशन है और आपके पास है, उसमें लिखा है कि जो तुम्हें कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। ये जो श्राप और आशीष जो है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपना दूरबीन लेके बैठ जाता है, बिनोकुलर्स लेके, और देखता है कि एक व्यक्ति ने किसी एक विश्वासी को आशीष दी तो परमेश्वर आशीष वाला बटन दबाता है ताकि उस व्यक्ति पर आशीष आए। फिर परमेश्वर ने देखा कि एक विश्वासी के लिए किसी ने श्राप दिया तो परमेश्वर श्राप वाला बटन दबाता है फिर उस पर, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है, एक वाचा है, इसलिए ये इस रीति से काम करता है। जैसे आप कोई चीज़ को छोड़ देते तो अपने आप ही वो नीचे को चला जाता ना, वैसे ही होता है, ऑटोमेटिक अपने आप होता है। जब किसी एक विश्वासी को, जो कि अब्राहम की संतान है विश्वास के कारण, उसको जब भी कोई आशीष देता है अपने आप उसके जीवन में आशीष दिखना शुरू हो जाती है। और इसी तरह एक अब्राहम की संतान को, यानी एक मसीही विश्वासी को, और किसको सोच के बताइए, बाइबल स्कॉलर्स, अब्राहम की संतान कौन कौन है? सारे लोग अब्राहम की संतान में आते हैं क्या? नहीं आते। मसीही लोग और यहूदी लोग, शारीरिक रीति से वे अब्राहम की संतान है और आत्मिक रीति से हम अब्राहम की संतान है। हम दोनों के लिए परमेश्वर ने यह कहा है कि यदि कोई हमें आशीष देगा तो उनको आशीष मिलेगी उसके बदले, यानी अपने आप होगा। और यदि हमें कोई कोसेगा तो उन पर श्राप आएगा। कोसने का मतलब क्या है? आपको किसी भी विश्वासी को श्राप देने की जरूरत नहीं है श्राप पाने के लिए। श्राप तो बहुत बड़ी बात है। श्राप तो ऐसा होगा ना कि यदि आप किसी को बोले, किसी भी विश्वासी को, कि तेरा सत्यानाश होगा, वो तो श्राप माना जाएगा ना। नहीं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं, आप घबराइए मत। ऐसा कहना हम श्राप मानते हैं, है ना? या हम बोले कि तू कभी ठीक नहीं होगा, कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, तेरी कभी भलाई नहीं होगी, ये तब हम, ये सब श्राप में आता है, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है श्राप पाने के लिए। श्राप पाने का आसान तरीका मैं बताता हूं आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल मत बताना, लेकिन मैं बता के ही छोड़ूंगा ताकि आपके ऊपर श्राप ना आए। आपको श्राप पाने के लिए इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ उठाए और बोले, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है कि अगर आप किसी भी विश्वासी को कोसेंगे, और कोसने का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी विश्वासी को तुच्छ जानेंगे, अगर किसी भी विश्वासी का निरादर करेंगे, अपमान करेंगे, सोचिए इस बारे में, सोचिए कितना आसान है श्राप पाना आपके लिए और मेरे लिए। एक विश्वासी के लिए या एक यहूदी के लिए इतना करना काफी है आपके लिए कि आप उसके बारे में बुरा सोचें, या कुछ बुरी बात बोलें, या उसका अपमान करें, उसका इंसल्ट करें। कोसने का मतलब यह है, जब परमेश्वर जन ने मुझसे इतना कहा, मैंने स्टडी किया उस शब्द को, स्टडी किया, उसमें यही लिखा है कि यदि हमारा कोई इंसल्ट करे, हमारा कोई निरादर करे, अपमान करे, या कोई ताना मारे, या कोई हंसी उड़ाए, अब देखिए कितना सीरियस है। परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा था कि यदि कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए, यदि कोई तुम्हारा निरादर करे या अनादर करे, अपमान करे, तो उस पर श्राप आएगा। देखिए परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, लेकिन यही चीज हमें नुकसान भी कर सकती है। कैसे? क्योंकि हम अपने लिए तो ये समझ के चलते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम परमेश्वर की संतान है, हम स्वर्ग के वारिस है, हम परमेश्वर के घराने के सदस्य है, और हम परमेश्वर के मास्टरपीस है। अपने लिए तो ये सब हम समझते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, बोलते भी हैं, है ना। हम यीशु मसीह का क्या है, यीशु मसीह के राजदूत है, एम्बेसडर। इतनी बड़ी पदवी हम अपने लिए तो बड़ी खुशी खुशी मानते हैं, दूसरे भाई बहनों के लिए हम ये मानते हैं जब हम उनकी बुराई करते हैं। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि वो भी परमेश्वर की सृष्टि है, संदान है, परमेश्वर का स्वर्ग का वारिस है वो, और यीशु मसीह का राजदूत है वो। हम सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते हम। जब हमें गुस्सा आता है या हमारे साथ किसी और विश्वासी भाई बहन के द्वारा कुछ बुरा बर्ताव होता है, तो हम खूब सोचते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं उसके लिए, है ना, सोचते हैं। और कोई नियंत्रण नहीं होता, कई दिनों तक सोचते हैं, फिर सोच सोच के क्या होता है कि कुछ समय के बाद कुछ बातें, खूबसूरत बातें मुंह से निकलती भी है। और जब तक चार पांच जनों से हम बात नहीं करेंगे उस व्यक्ति के बारे में, हमें चैन नहीं आता, हमें तसल्ली नहीं होती, उसके बाद भी तसल्ली नहीं आती। तो और ऐसा करके हम क्या करेंगे, हम श्राप को अपने जीवन में बटोरेंगे, हमारे खाते में जमा हो जाता है। तो आशीषित रहने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी को ना खोसे, किसी का अपमान ना करें, किसी का निरादर ना करें, किसी की हंसी ना उड़ाए, किसी को गीन भावना से ना देखे। और उस समय ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको ऐसे काम में पकड़ेंगे और एकदम आप पर श्राप भेजेंगे, वो अपने आप आएगा आपके जीवन में। ये परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला एक नियम है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की वाचा है। लेकिन यदि आप विश्वासी भाई बहनों को आशीष देंगे, तो आपके जीवन में क्या आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आशीष कैसे देंगे आप? ये तो कहना बहुत आसान है कि हम आशीष देंगे, आशीष कैसे देंगे? जब भी कोई विश्वासी मिले, आप हाथ मिलाएंगे, बोले कि आशीष दे रहा हूं मैं, या परमेश्वर की आशीष हो, ये कहना काफी है। आशीष देने के लिए आपको उन विश्वासियों के बारे में जिनको आप जानते हो अच्छी बातें सोचना होगा, परमेश्वर से उनके लिए जब प्रार्थना करते हो तो कुछ अच्छी बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप बैठ के उनके बारे में सोचते हो तो कुछ अच्छी बातें सोचना चाहिए। आसान है क्या? आसान नहीं है। गलत बातें सोचना आसान है, बुरी बातें सोचना आसान है, हंसी उड़ाना बहुत आसान है, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, नहीं? हर एक विश्वासी का अपना अपना एक स्वभाव है, एक फितरत है। किसी की फितरत हमें अच्छी लगती है और बहुत सारों की हमें अच्छी नहीं लगती। तो उन बातों को सोच के अपने मन ही मन उनका हंसी उड़ाना बहुत आसान है, नहीं? और फिर दूसरों के साथ मिलकर कुछ विश्वासियों का के बारे में बात करना या उनके हंसी उड़ाना, उनका निरादर करना बहुत आसान है। और ऐसा करने से हमारे जीवन में श्राप आते हैं, आशीष आने के बजाय श्राप आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह ध्यान रखना है कि विश्वासियों के जो अब्राहम की संतान है, जो अब्राहम की आशीषों के वारिस है, उनका हम किसी भी रीति से, हमारी बातों से, हमारी सोच में, क्योंकि पहले हम सोचते हैं फिर बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे हरकतों में, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है वो। तो हमें सोचना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। निरादर नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। अगर सोचना है तो कुछ अच्छी बातें सोचिए। अगर आप उनके बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छी बातें बोलिए। आसान है? इतना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में जिन लोगों से हम मिलते हैं, हर जगह लोगों से हम टकराते हैं, है ना, मुलाकात होती है, उनके बारे में हमें क्या पता है कि उनमें से कितने विश्वासी है? हम तो सिर्फ अपने चर्च के लोगों को ही पहचानते हैं ना कि ये विश्वासी है। दूसरे लोगों को हम क्या जानते हैं कि वो विश्वासी है कि नहीं? और हो सकता है जिनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हो, जिनसे आप गलत तरीके से पेश आ रहे हो, वो विश्वासी हो सकता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए ध्यान रखें कि हम हर एक के साथ ठीक रीति से व्यवहार करें और बात करें, किसी का भी हम निरादर ना करें, किसी का भी हम हंसी ना उड़ाएं, किसी के लिए भी हम गलत ना सोचे बैठ के। ये तो परमेश्वर ने और भी मुश्किल कर दिया हमारे लिए, और भी आसान हो गया, तो अच्छी बात है। फिर हम आसान तरीके से जिएंगे आज से, ताकि हमें आसानी से आशीष मिलती रहे। तो आशीष हमारे जीवन में दिखाई ना देने का एक कारण ये है, ये एकमात्र कारण नहीं है, एक कारण ये है, क्योंकि आशीष के बदले हम जो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, श्राप को बटोरते हैं। इस तरह दूसरों को खोसने के कारण, दूसरों के लिए गलत सोचने के कारण, दूसरों का निरादर करने के कारण, अपमान करने के कारण, हंसी उड़ाने के कारण, इसलिए हम ध्यान रखेंगे, हम जब भी किसी भी व्यक्ति के लिए सोचेंगे और बोलेंगे, हम अच्छा सोचेंगे। फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय में पौलुस ने चर्च को, कलीसिया को एक आदेश दिया था। हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि देखते हैं कि उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, ये फिलिपियों की पत्री का 4:8 है, फिलिपियंस चैप्टर 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यानी साधारण भाषा में इन सब बातों के बारे में सोचा करो। सोचने का तरीका भी परमेश्वर ने बता रखा है कि हमें किस तरह की बातें सोचना चाहिए अपने मन में। इससे हटकर हम सोचेंगे तो गारंटी इस बात की है कि हम किसी ना किसी को खोसेंगे, अपने सोच के द्वारा बोलने के द्वारा और व्यवहार के द्वारा, और हमारे ऊपर श्राप रहेंगे। इसलिए हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि जो जो बातें अच्छी है, जो बातें सत्य है, जो प्रशंसा के योग्य है, जो मन भावनी है, ये सब हम सोचना शुरू करेंगे। अपने लिए तो हम सोचते ही है, दूसरों की बात बता रहा हूं। और जब हम अपने विश्वासियों के लिए सोचते हैं तो हम अच्छी बातें सोचेंगे। परमेश्वर से जब भी हम प्रार्थना करेंगे उन पर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वासियों के साथ और जिनको हम जानते नहीं कि वो विश्वासी है या नहीं, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उन पर हम करुणा दिखाएंगे। इफिसियों की पत्री में और रोमियो की पत्री में, दो जगहों पर, इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय में और रोमियो की पत्री का 14 अध्याय में, दोनों जगहों पर हमें ये कहा गया है कि हमें सहना चाहिए। अगर हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो तुरंत हम गलत ना सोचें, खास रूप से विश्वासी भाई बहनों के साथ। उसमें लिखा है कि हम दूसरों को प्यार करें और उनको हमें सहना चाहिए। लेकिन प्रभु में आने से पहले हम क्या करते थे? सहना वहना तो दूर की बात थी, हम तुरंत कुछ सोचते थे, बोलते थे। लेकिन विश्वासी होने के कारण परमेश्वर कहता है कि दूसरों को सह लो। कहां तक सहेंगे हम? जितना सह सकते हैं। और परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा कोई भी काम करने को नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते हैं, यानी हमें वो अनुग्रह देगा ताकि हम सह सकेंगे। परमेश्वर कहता है कि गाली देने के बजाय सह लो, विश्वासियों के लिए। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, सिर्फ इस हफ्ते नहीं, जब तक हम जीवित हैं हम प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि हम बदलते जाएंगे। दुनिया को सुधरने के बजाय हम सुधरते जाएंगे, और जब हम सुधरेंगे जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है वो भी सुधर जाएंगे, और हमारे जीवन के प्रभाव से बहुत से लोग यीशु मसीह में आएंगे। ध्यान रखना, आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, श्राप के या श्रापों के वारिस होने के लिए नहीं बुलाया है। इसलिए हम श्राप से दूर रहेंगे, हमारे मुँह से आशीष हमेशा निकलेगी। आशीष की बातें इस पत्रस की पत्री में 3 अध्याय, जहाँ पे हम शुरुआत में थे, वहाँ पे लिखा है कि अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, ऐसा लिखा है क्या हिंदी बाइबल में? पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय का 9 पद में हमने पढ़ा था कि आशीष दो, श्राप के बदले गाली के बदले गाली मत दो, और बुराई के बदले बुराई मत करो। और 10 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ, एक सीक्रेट बात बताता हूँ, अगर तुम में से कोई जीवन का आनंद लेना चाहता है, यह है, ये हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है। कहने का मतलब क्या है? जीवन का आनंद, या साधारण भाषा में दिल्ली की जो भाषा है, जीवन का जो मजा लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? अपनी जीभ का ध्यान रखना है, अपने होठों का ध्यान रखना है, दोनों का मतलब एक ही है। ये पोएटिक लैंग्वेज में लिखा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से क्या निकलता है, आपके मुंह से बुराई ना निकले और छल की बातें ना निकले। छल की बातें कौन सी होती है? छल किसको कहते हैं? छल की बातें वो होती है जो सत्य से हटके हैं। छल की बातों को हम झूठ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सत्य नहीं है। और जब आप किसी भी एक विश्वासी के लिए गलत सोचते हैं तो आप सत्य से हटके सोच रहे हैं ना, आप छल की बातें सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं। जब भी आप सत्य से हटकर बात करते हैं आप झूठ बोलते हैं। बहुत भारी इल्जाम लगा रहा हूं मैं। जब भी आप परमेश्वर के वचन से हटकर किसी भी विश्वासी के लिए सोचते हैं और बोलते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं या छल की बातें बोल रहे हैं। और पतरस क्या कहता है? पतरस एक सीक्रेट, एक गुप्त बात हमें बता रहा है। अगर जीवन का मजा लेना चाहते हो, यानी आशीष देखना चाहते हो, तो अपने होठों को थोड़ा सा लगाम दो, यानी ध्यान रखो कि आपके मुंह से क्या बातें निकलती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे को जाना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके मन में आप किस तरह की बातें सोचते हैं, क्योंकि जो आप मन में सोचते हो वही मुंह से निकलती है। ध्यान रखना, आज से हम क्या होंगे? आशीष के वारिस होंगे। हम श्रापों को नहीं बटोरेंगे, और हम इसलिए जो बातें अच्छी है, जो बातें प्रशंसा की योग्य है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, वो सोचेंगे, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, सबके बारे में, और वो बोलेंगे। और इस तरह हम हकीकत में देखेंगे कि हम आशीष के वारिस हैं।